ओम शांति। कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सुशील भाई 3 मिनट, संगम योगी बैंक।
ओम शांति। संगम योगी बैंक, जैसे देखा जाता है भविष्य की बचत के लिए मनुष्य पहले से सतर्क रहता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो उन योजनाओं के अंतर्गत भविष्य सुरक्षित रहे, सेफ रहे, बैंक में समय समय पर जमा कराता है। इसी तरह से बाबा ने संगम में पर ये जो बैंक खोला है बचत का, इसमें बहुत सारे अविनाशी खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां। ये जो बैंक है केवल संगम पर ही खुला है, और ये जो बैंक है ये भविष्य न केवल 21 जन्म बल्कि सारे कल्प के लिए जमा करने का अभी समय है। और एक एक अविनाशी खजाना हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, समय, पवित्रता, संतुष्टता, दुआएं, खुशी, ये सारे खजाने हैं जो हम केवल संगम पर ही जमा कर सकते हैं। समय का महत्व रखते हुए हम कितने इन खजानों को सफल कर रहे हैं, और इसको बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना हम बांटते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतने खजाने जमा होते जाते हैं। और ये केवल थोड़ा सा समय है संगम का। बाबा कहते हैं एक सेकंड बहुत अमूल्य है, कदमों में पद्म समाये हुए हैं। अगर एक सेकंड व्यर्थ गया तो एक साल व्यर्थ गया। माना समय का महत्व इतना है, उस महत्व को देखते हुए संगम में ऊपर हमको इन सब खजानों को सफल करने में हमेशा प्राथमिकता देनी है, ताकि भविष्य 21 जन्मों के लिए बल्कि सारे कल्प के लिए ये खजाने जमा कर सके और हमें पश्चाताप का सामना ना करना पड़े।
अजी बैंक कहाँ है?
हाँ,
एड्रेस कैसी है?
हाँ, ये बैंक
विशेषता है।
संगम पर ये बैंक जो है ब्राह्मण जीवन जो है, ब्राह्मण जीवन में ये बैंक खुलता है। ब्राह्मण जीवन के दौरान ये बैंक का दृश्य है, और ये तो हमारे संगम पर बाबा जो भविष्य के लिए निर्धारित करे बैंक तो यही है, जहां हम रहते हैं वही बैंक है। ये कर्म क्षेत्र ही एक बैंक है। इस कर्म क्षेत्र पर ही जो भी हम समन संपर्क में आते हैं, जो बाबा ने कल कहा समन संपर्क में आते हुए संतुष्टता, तो उस खाते से दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, और ये हमेशा खुला रहता है बैंक संगम पर, एक सेकंड भी बंद नहीं होता है। लेकिन हम कितना अपने इस बैंक में जमा कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्धारित करता है। इसका ब्याज अनगिनत अनलिमिटेड है। ओम शांति।
हीनाबेन ब्राह्मण कल्चर।
ओम शांति। ब्राह्मण कल्चर, ऐसे दुनिया में देखे जाए तो हर रिलीजन का कुछ ना कुछ कल्चर होता है, जैसे हिंदू का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, सिख धर्म का, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, और उस हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो दुनिया वाले फॉलो करते हैं। तो हमारा है ब्राह्मण कल्चर, और बाबा ने इस ब्राह्मण कल्चर में हमें कुछ पॉइंट्स दिए जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे जो कल्चर होता है उसमें कैसी लैंग्वेज होती है, तो ब्राह्मण कल्चर की लैंग्वेज बहुत अलौकिक लैंग्वेज होती है। जैसे हम सब जानते हैं
ब्राह्मण कल्चर की 10 विशेषताएं। एक तो लैंग्वेज,
तो जैसे हमारी बहुत अलौकिक लैंग्वेज होती है, उसमें हम पहले तो आपसे बात करना चालू करते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं। दूसरा, जैसे लौकिक, अलौकिक, ये वर्ड हम दुनिया में नहीं सुनते बट यहीं सुनते हैं। और जैसे अगर हम कहते हैं कि बाहर कहते हैं कि ये चीज को खा लो, है ना, तो यहाँ हम कहते हैं इस चीज को सफल करो। अगर हमें कुछ थॉट आते हैं, तो हमने माताओं को भी देखा है, तो माताएं कहती है कि आज ऐसा संकल्प आया, है ना। और हम एक दूसरे को जब प्रेफर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आत्मा ने ऐसे किया, जो दुनिया में हम नहीं सुनते। तो एक है लैंग्वेज, सेकंड है कल्चर में क्लोथ्स, हम कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो बाबा ने हमको यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, जैसे सफ़ेद कपड़े, तो सफ़ेद कपड़े हमारी प्योरिटी, हमारे पीस के लिए है। और जैसे बहनों के लिए बाबा ने परफेक्ट एक कपड़ा डिज़ाइन किया है जो साड़ी पहनती है। और ऐसे आप दुनिया वालों को नहीं देखेंगे, अगर एक तरफ एक ब्रह्मा कुमारी खड़ी है और एक तरफ संसार की सारी आत्माएं खड़ी है, तो हमारी बहन में जो प्योरिटी होती है वो झलकती है। और भाइयों के लिए भी बाबा ने जो वाइट इजार कुर्ते दिए हैं, इस ब्राह्मण कल्चर में क्लोथ्स हो गए ना। फिर बैज भी पहनते हैं हम, और हमारे सबके बैज भी अलग अलग हैं। और खाना भोजन, तो भोजन हम कल्चर में भोजन भी आता है, वैसे यहाँ पे तो वैरायटी भोजन है, लेकिन हम भोजन कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और फिर उसका भोग लगा के बाबा को स्वीकार कराते हैं और दृष्टि देते हैं और फिर भोजन बाबा की याद में खाते हैं। तो ये हो गया भोजन। हाँ, वो ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? हम दाता हैं।
No prompting.
वो ब्राह्मण जो होते हैं बाहर की, वो भिक्षा मांगते हैं, और हम जो होते हैं वो यहाँ पे दाता होते हैं। हम सबको देने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हम शक्तियाँ देते हैं, शांति देते हैं, पवित्रता की किरणें।
डॉक्टर ब्रिजेश भाई जी, भगवान का परिवार, कल की मुरली, दिल्ली आगरा से मुलाकात।
भगवान का परिवार, कल बाबा ने बताया कि ऐसा परिवार, इतना बड़ा परिवार किसी भी युग में नहीं मिल सकता। हम लोग पूरे सत्युग से लेकर और कलयुग तक पूरा राउंड लगा के देखा ना, सत्युग में ऐसा परिवार था, वहां तो बहुत ही परिवार नियोजन चलता है, वो छोटा सा होता है। त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में थोड़ा बड़े हुए परिवार, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था। वो कलयुग में तो बहुत बड़े हुए, पर फिर भी संगम युग का जो परिवार है, सिर्फ एक परिवार जिसमें एक मुखिया, बाकी के सारे बच्चे, वो सब बातें मानते हैं, सब एक से एक सिस्टम पर चलते हैं, सबके लिए एक कल्चर बना हुआ है, एक गाइडलाइन है, सबको एक टाइम उठना है, सब कुछ एक मत, सब एक जो मत बाबा ने दे दी उस पर पूरा का पूरा परिवार उसको फॉलो करता है। तो ऐसा अनूठा परिवार बाबा ने बताया कभी भी और नहीं मिलता है। और इस परिवार की विशेषताएं देखा होगा कि लॉकेट वगैरह में भी, जब छोटा सा भी, थोड़ा सा भी परिवार में चार लोग होते हैं तो आपस में खटरपटर शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा परिवार है, लाखों लोग हैं, लेकिन सब एक मत पर, कोई आपस में खिटपिट नहीं, सब चीज एक ही चीज फॉलो की जाती है। और इस परिवार की विशेषताएं, सब बेफिक्र बादशाह है, पूरा का पूरा परिवार ही बादशाहों का है। बाकी जगह देखा होगा परिवार में सिस्टम बना हुआ है कि एक बड़ा है फिर छोटे छोटे, यहाँ एक हेड है लेकिन उसके बाद बाकी के सारे सब बादशाह हैं। बाबा सबको बेफिक्र बादशाह बनाए हुए है। परिवार की यूनिटी ले लें तो परिवार एकदम यूनाइटेड रूप से चलता है, सबका उठने का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स, बोलने का टाइम फिक्स, कभी कभी बीच में 3 मिनट एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है। और बाकी ये परिवार तो बस मौज करो, मौज करने का परिवार है।
टाइम बाकी है,
टाइम बाकी है। परिवार इतना बड़ा है लेकिन 3 मिनट नहीं निकलते। और बस अपना तो एक ही मन करता है कि ये परिवार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाए, और संगम युग का टाइम भी थोड़ा बढ़ता ही जाए, एक्सटेंशन मिलता जाए, जल्दी से खत्म ना हो पाए। अभी भी टाइम नहीं हुआ। पूरा पारिवारिक सूत्र, सब आपस में ऑलमोस्ट ग्लू टाइप्स है। अच्छा,
प्रभाकर भाई, दिल्ली से मुलाकात, आगरा से मुलाकात, यज्ञ सेवा का पुण्य। स्टार्ट।
ओम शांति। भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारे पुण्य किए और हर एक पुण्य का अलग अलग फल होता है। पुण्य के साथ ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कर रहे हैं। कई बार टाइम जाने के बाद उस पुण्य का उतना महत्व नहीं होता है। जैसे कि एक मुरली में बाबा ने बोला था कि यज्ञ में धन सब लगाते हैं, लेकिन जिसने बेगरी पार्ट में जिन्होंने धन लगाया और गुप्त रीति लगाया तो उनका सबसे ज्यादा और सबसे अधिक जमा हुआ। तो ऐसे यज्ञ में जो सेवा होती है ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप वो सेवा दे रहे हैं और किस वृत्ति से दे रहे हैं, तो उस अनुसार उसका पुण्य का खाता अधिक जमा होता है। और कर्म तो किया पर उसको कितना प्रत्यक्ष किया या कितना शो हो गया तो वो भी उसमें प्लस माइनस में आ जाता है। और एक चीज, जब मुरली चल रही थी तो हमने तो पढ़ी थी क्योंकि हमें उस समय सेवा पे जाना था, बाबा ने बोला कि दिल्ली के लिए कि वहां सब लोग गए, ब्रह्मा बाबा गए, मम्मा गए, और जो सेवा शुरू हुई थी तो सब
नहीं, नहीं, खाली यज्ञ सेवा के पुण्य पर बोलना,
केवल यज्ञ सेवा के
इधर उधर नहीं।
तो यज्ञ सेवा में एक मनसा सेवा का पुण्य भी बहुत है और साथ साथ स्थूल सेवा का भी। और इसमें स्थूल सेवा अगर करते हैं उस समय अगर हमारी मनसा ठीक नहीं होती है तो वो पुण्य भी जो होता है माइनस का रूप ले लेता है, क्योंकि कर्म तो किया लेकिन उसको कितना हमने एक होता है कि जैसे वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जितना किया उससे ज्यादा उसको गड़बड़ भी किया। तो हम ऐसा समझते हैं कि यज्ञ सेवा में जब हम कोई भी सेवा करते हैं स्थूल, तो उसका महत्व का आधार जो बनता है वो हमारी मनसा पे ज्यादा बनता है। जैसे एक मुरली में बाबा ने बोला था कि जो भी आप सेवा करते हो उसके नंबर जो है आपके मन की वृत्ति द्वारा जुड़े जाते हैं, ना कि स्थूल सेवा में टाइम कितना लगाया या कितने बड़े लेवल की सेवा करी। हो गया।
चलने दो।
और यज्ञ सेवा कितने प्रकार की है, एक तो मधुबन में जो सेवा करते हैं, सेंटर पे जो सेवा करते हैं, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की जो सेवा करते हैं, तो इन सब की सेवा का पुण्य का खाता हमारे अकाउंट में जमा होता है। लेकिन हमको एक बहन जी ने बोला था कि जो मधुबन में सेवा करते हैं उसका भी अधिक होता है, लेकिन जब सेंटर पे करते हैं उसका और होता है, क्योंकि सेंटर पे मधुबन में बढ़ जाती सेवा, क्योंकि एक सेवा होती है उसको करने के लिए चार लोग होते हैं, सेंटर पे एक ही व्यक्ति करता है। ओम शांति।
आशीष भाई। यहाँ बैठेंगे, माइक जब हाथ में आएगा तब दिया जाएगा। संगम योगी गुप्त खजानों की 10 विशेषताएं, नंबर से, वन नंबर से चालू करो। 10 विशेषताएं, संगम योगी गुप्त खजानों की 10 विशेषताएं, नंबरिंग गिनते जाओ ताकि इधर उधर ना जाए टॉपिक। जल्दी।
ओम शांति। संगम की गुप्त विशेषता है।
संगम योगी गुप्त खजानों की विशेषता है।
संगम योगी गुप्त खजानों की विशेषता है। संगम युग में वास्तव में देखा जाए सब कुछ गुप्त ही दिखता है। संगम युग खुद ही गुप्त है।
खजानों की विशेषता, संगम युग की विशेषता नहीं।
तो हाँ, दूसरा है कि वास्तव में संगम युग का खजाना गुप्त माना, सबसे बड़ी खजाना हमारा बाबा है, बाबा गुप्त है, प्राप्ति गुप्त है, हम पुरुषार्थ करते हैं वो भी गुप्त है।
पुरुषार्थ नहीं, संगम योगी जो खजाना है उसकी 10 विशेषता है,
इसी में सब आ जाएगा
ना। खजानों की विशेषता है वो खजाने और ये खजाने, संसार का धन और ये धन, इनमें क्या अंतर है?
संसार का धन है
खजाने या धन?
एक खजाना वो स्थूल है, और जो संगम में जो बाबा के द्वारा खजाना मिलता है, धन मिलता है, वो सूक्ष्म है।
हाँ, एक पॉइंट।
बाबा दुनिया के जो पढ़ाए है वो स्थूल पढ़ाए हो जाता है, जो एक जन्म में खत्म हो जाता है, और बाबा जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान गुण से सजाते हैं, वो अविनाशी चलता है, मतलब कई जन्मों तक चलता है। दुनिया में जो शारीरिक बल है वो क्या करते, तो थोड़े समय बुढ़ापा आने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन बाबा ने जो हमें आत्मा को शक्ति भरता है, उस शक्ति से क्या होता है, तो हम कई जन्मों तक शक्तिवान रहते हैं, और क्या, दूसरों को भी शक्तिवान बनाते हैं। जैसे हमारे दादी जानकी जी के शरीर में ताकत नहीं, लेकिन फिर भी सभी को ताकत भर रही है। दुनिया का जो प्रेम है वो प्रेम क्या करता है, अपने में फंसा के रखता है। बाबा जो हमें प्रेम सिखाता है वो प्रेम क्या करता है, तो इस दुनिया से ऊपर उठाता है और सबको अपना बनाता है। दुनिया में जो शांति है कुछ क्षण के लिए होता है, और बाबा जो शांति देता है जिससे हम 2500 वर्ष तक क्या रहते, तो पूरा शांति में ही रहते हैं, मना सुख शांति के जीवन जीते हैं, और द्वापर कलयुग भी हमारा बहुत अच्छा होता है। कितना हो गया,
चलने दो। एक एक खजाने का अलग अलग नहीं, जनरल खजाने की विशेषताएं बतानी।
दुनिया में जो व्रत रखते हैं,
व्रत नहीं खजाना,
व्रत से जो प्राप्ति होती है वो पवित्रता हो गया ना, पवित्रता की जो प्राप्ति होती है, पवित्रता से जो प्राप्ति होती है वो स्थूल होता है। खान पान को ही ब्रह्मचर्य, कोई खान पान को ही ब्रह्मचर्य को क्या समझते, तो खजाना समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाबा सूक्ष्म जो हमें पवित्रता की जो ज्ञान दिया है, उससे क्या होता है हमें।
देवेंद्र भाई,
तो उससे हम माला माल होते हैं और दूसरों को भी माला माल करते हैं।
तीन हुए खाली खजानों की विशेषता है, तीन ही विशेषता है, सात बाकी है। तीन प्रकार के खाते और उनको जमा करने की विधि।
ओम शांति। तीन प्रकार की जो बाबा ने खाते बताए हैं, दुआओं का खाता, आशीर्वाद का खाता,
आशीर्वाद का खाता वो एक ही हो गया,
एक ही हो गया,
एक
पुण्य का खाता,
दो
और सेवा का, जो
सेवा का नहीं है, सौ पुरुषार्थ का खाता,
सौ पुरुषार्थ का खाता। तो ये जो तीन प्रकार के जो खाते हैं, सो पुरुषार्थ अर्थात हम जो पुरुषार्थ आज करते हैं, हम अपने उन्नति और प्रगति के लिए करते हैं, और ये जितना करते जाते हैं हमारी स्थिति और अवस्था दिन प्रतिदिन चढ़ती कला का अनुभव। तो कल तो बाबा ने बोला ये चढ़ती कला का जो चलने का समय नहीं, उड़ती कला का समय है। तो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन इस प्रकार के अनुभव हम कर पा रहे हैं। सुपुरुषार्थ से बाबा ने बोला कि, कल भी बाबा ने बोला कि कारण शब्द को अगर निवारण करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में कितनी पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प है, दिव्य संकल्प है, अलौकिक संकल्प है, उसके द्वारा ही हम अपनी स्थिति और अवस्था को जमा सकते हैं। तो सुपुरुषार्थ अर्थात स्वयं द्वारा हम आगे बढ़कर के दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत अगर बनते हैं, और दूसरे भी तीन चार दिन पहले जो स्लोगन में आया था, तुम ऐसा सहयोगी बन जाओ जैसे आपको देख करके दूसरों का योग नेचुरल लग जाए। तो इसीलिए बाबा ने बोला शो के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आज कर रहे हैं, सारा खेल तो शो पर ही टिका हुआ है। इसीलिए हम जितना निर्विघ्न होकर के, और दूसरों किसी के भी, जैसे विश्व रत्न दादा कहते थे मेरे द्वारा कोई भी किसी का संकल्प न चले, मेरा ये पुरुषार्थ है, तो ये वो कहते थे। इसीलिए जो सुपुरुषार्थ की तो लंबी लिस्ट है, और दूसरा जो पुण्य का खाता, जो पुण्य का खाता, तो हम सब यहाँ पुण्य आत्मा ही इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि संगम युग में अपनी सुपुरुषार्थ द्वारा
कल की मुरली से पुण्य का खाता जमा करने की दो विधि,
पुण्य का खाता, अच्छा सुपुरुषार्थ,
सुपुरुषार्थ हो गया, पुण्य का खाता,
पुण्य का खाता अर्थात हम दूसरों को कितना दे सकते हैं स्वयं की। अच्छा जैसे कि जमा करने के लिए जो बाबा ने बोला है,
पुण्य का खाता जमा करने की विधि,
जैसे निमित्त बनते हैं, निर्माण बनते हैं,
निमित्त निर्माण वो जनरल विधि है, निस्वार्थ और बेहद का भाव भावना, निस्वार्थ और बेहद का भाव भावना वृद्धि, और तीसरा दुआ का खाता जमा करने की विधि,
जैसे कि दुआएं देना, और
दुआएं देना लेना नहीं विधि है, संतुष्ट रहना और
करना, करना।
चलो शाम भाई,
दस सेकंड ला ज्यादा लगा
खिटपिट गड़बड़ सड़बड़ वादी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने की क्या प्लानिंग की है, खिटपिट गड़बड़ सड़बड़ वादी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने की प्लानिंग।
ओम शांति। जैसे कल बाबा ने बताया दिल्ली के बारे में कि दिल्ली के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो खिटपिट गड़बड़ और सड़बड़, तो आज दुनिया में देखा जाए तो सब जगह खिटपिट गड़बड़ और सड़बड़ तो सब जगह ही है, लेकिन दिल्ली जो जैसी राजधानी है तो वहां पे अभी हमारी भविष्य राजधानी भी बनने वाली है, तो दिल्ली में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ खड़बड़ और सड़बड़ चल रही है लगता, तो इसलिए बाबा ने पूछा कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो वहां पे करने की, क्योंकि जैसे भविष्य में हमको दिल्ली में जाना है, वहां पे राज्य करना है, तो उसके हिसाब से वहां पर तैयारी भी होनी चाहिए, अगर तैयारी नहीं है तो हम वहां पर जा नहीं सकेंगे। जैसे बाबा हमेशा मुरलियों में कई बार कहता है कि दिल्ली जो है परिस्थान बनने वाला है, तो परिस्थान बनने के पहले वहां पर साफ सफाई होगी, उसके बाद में हम वहां पर जाएंगे, तो वहां पर जो भी खिटपिट चल रही है, चाहे वो ब्राह्मणों के बीच में हो या चाहे लौकिक में हो या चाहे संबंध संपर्क में हो, किसी भी है लौकिक अलौकिक जो भी है, खिटपीट गड़बड़ सड़बड़ जो भी चल रही है, पहले उस गड़बड़ को खत्म करना पड़ेगा, और इस गड़बड़ को खत्म करने का कल जैसे बाबा ने बताया, उपाय बताया कि कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करो, तो ही हम हमारे अंदर की जो भी खिटपीट है, गड़बड़ सड़बड़ है, उसे खत्म कर सकते हैं और दिल्ली में जा सकते हैं। तो दिल्ली में जाने के लिए जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि जो दिल पे राज करेंगे वही दिल्ली में जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें बाबा के दिल पे राज करना होगा, तो बाबा के दिल पे राज करने का यही जो बाबा ने कल बताया कि कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करो, तो जितना हम कारण को निवारण में परिवर्तन करते जाएंगे, जैसे बाबा ने उसके लिए कहा है कि कल एक सर्व और सदा, जो मैंने आज सवेरे चिंतन किया था कि कोई भी अगर हमारे पास कारण है तो उस कारण को एक तो सर्व के लिए और सदा के लिए उसको जो है निवारण में परिवर्तन करना है, तो ही हम हमारे अंदर की जो भी खिटपीट है उसको दूर कर सकेंगे, जब अंदर की खिटपीट दूर होगी तो बाहर की खिटपीट जो है वो अपने आप ही दूर होती जाएगी। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है कि दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली परिस्थान बनना है, वहां पे हमारी राजधानी बनने वाली है, जैसे राजधानी होगी उसी प्रकार का राज्य होगा, तो वो राजधानी के पहले हमें हमारे अंदर की जो राजधानी है उसे ठीक करना होगा, अंदर की राजधानी ठीक है तो बाहर की राजधानी अपने आप ही ठीक होती जाएगी, तो जो भी खटपिट गड़बड़ है, खिटपीट है और सड़बड़ है वो अपने आप ठीक होते जाएगा। ओम शांति।
15 सेकंड।
तो गड़बड़ जब होती है, जैसे हमेशा हम सब जानते हैं कि हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार होते हैं उसी वजह से गड़बड़ होती है, जो सूक्ष्म में होता है वही बाहर स्थूल में भी आता है।
कारण शब्द के तीन साथी और कारण शब्द के तीन नुकसान। किताब बंद। कारण शब्द के तीन दूसरे शब्द जो साथी है और कारण शब्द के तीन नुकसान। जल्दी कारण शब्द के तीन साथी, वो शब्द भी, वो साथी भी तीन शब्द है। टाइम जा रहा है।
शुरू तो तभी से हो जब बोलना शुरू
करेगा। कारण शब्द के तीन नुकसान।
कारण शब्द से हम समय पर पहुंच नहीं सके।
नहीं, मुरली में जो है वो बताओ
ना, कर तो रहे हैं।
कारण शब्द के तीन नुकसान और कारण शब्द के तीन दूसरे शब्द जो साथी है।
पहले साथी बता दो, पहले नुकसान बता दो।
नेक्स्ट विठल भाई पास आ जाओ। पास पास, अगर नहीं पता है तो पास करो। कारण शब्द के तीन दूसरे शब्द तीन जो साथी है।
ओम शांति। कारण शब्द के
तीन साथी जो मुरली में शब्द आए हैं वो
तीन साथी, वो ऐसे कैसे वैसे अपन
right.
बोलते हैं ना,
ऐसे वैसे कैसे, ये है तीन शब्द जो कारण शब्द के साथी है। और नुकसान,
नुकसान
कारण का शब्द क्या करता है, कितना सस्पेंस क्रिएट किया है बाबा ने मुरली में कि एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द है, तुरंत नहीं बता दिया क्या शब्द है, फोटो लो, हिम्मत है, तैयारी है, ऐसा वैसा, और फिर लास्ट में बताया वो एक शब्द है, क्या करता है, अलबेला। एक दूसरा पुरुषार्थ में क्या कर जाता है, पुरुषार्थ में क्या करता है, बंधन, और तीसरा निवारण नहीं होने देता। अभी आपका लास्ट इनका पॉइंट, ये तो पांच वाला था ना, नहीं नहीं दूसरा टॉपिक दे रहे आप।
टॉपिक बाकी
अमर नाथ बाप का अमर भव का वरदान, फर्स्ट टाइमर से मुलाकात, पहली बार वालों से मुलाकात।
हम अमर बाप के अमर बच्चे हैं क्योंकि बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इसी कारण हम अमर बन गए हैं।
कौन सी तीन बातें याद रखनी है,
इसलिए बाबा ने, हम अमर बाप के बच्चे हैं
एक,
और हम अमर अमर पद प्राप्त करने वाले हैं,
दूसरा
और
तीसरा
है
पहला अमर आत्मा हूँ।
हाँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, अमर बाप के बच्चे हूँ
और अमर पद प्राप्त,
अमर पद प्राप्त करने वाले हूँ।
इसका क्या करना है अमृत वेला के बाद,
यानी मैं अमर हूँ, अमर बन के सबको अमर बनाना है। क्योंकि बाबा ने जो अमर का जो अमर भाव का वरदान दिया है और उस वरदान से हमें जो प्राप्तियां हुई है वो प्राप्तियां सभी को देनी है। अमर से सुख शांति के अमर भाव का वरदान बाबा ने दिया है, तो इसलिए हम खुद अमर बन के दूसरे को भी अमर बनाना, उसके लिए जो प्राप्तियां है अमर भाव होने के कारण जो बाबा से हमें प्राप्तियां मिली है वो प्राप्तियां का दूसरे को हमें अनुभव करना, जैसे सुख है, शांति है, आनंद है, जो हमें मिला है वो दूसरे को हमें देना है, तो इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मना ये भी सेवा कर, इस सेवा से सबको दे सकते। अच्छा ओम शांति, टाइम हो गया।
शिल्पा बहन डबल पुरुषार्थ थी, डबल पुरुषार्थ बाजू वाले विदेश की बहन जी आ जाए, क्या रुचि बहन आजा आजा, डबल पुरुषार्थी पास नहीं, डबल फॉरेनर्स को बाबा ने कहा है, डबल फॉरेनर्स अर्थात डबल पुरुषार्थी, बाप दादा को बहुत 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 पसंद है डबल फॉरेनर्स, होशियार है, हाँ तो हाँ ना तो ना।
एक तो सुबह सुबह इस क्लास में आए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डबल पुरुषार्थ में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और मुरली में से पॉइंट्स पिक करके उनको आप जरूर अपना ट्रैफिक कंट्रोल या फिर जो भी टाइम मिले उसमें उनको चर्न करने की कोशिश करें और अमृत वेले में खुद को रिमाइंड करें स्वमान के बारे में, जैसा सूरज भाई ने भी बताया था कि स्वमान स्थिति में अगर रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि जो है वो गोल्ड डायमंड से जड़ी हुई है तो गार्बेज तो उसमें आ नहीं सकता। और बस इतना ही याद है मुझे।
बोलते जाओ बोलते जाओ।
और जो मुरलियां हाँ अटेंशन अलर्ट रहना अपना, अगर थॉट आए अपने माइंड को कंट्रोल करना, माइंड से बातें करना, उसको बताना कि अभी मेरा राज चल रहा है, तुम्हारा खत्म हो चुका है। और बुद्धि से भी सिमिलरली बात करना, बुद्धि को भी सिमिलरली अगर पॉइंट कुछ प्रॉब्लम आती है बाबा को लेटर लिखो, बुद्धि को भी लेटर लिखो, माइंड को भी लेटर लिखो, जो भी पॉइंट आता है उसी पॉइंट पे फोकस करके उसकी रिप्लेसमेंट करके किसी और चीज से उसको सब्स्टिट्यूट करो अगर कोई थॉट्स गलत आ रहे हैं। और हाँ, और अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करना और उसकी चेकिंग करना एंड ऑफ डे कि ये हमने प्रॉपरली फॉलो किया या नहीं। और मुरलियों में जैसे जैसे बाबा कुछ होमवर्क देते हैं उनको जरूर फॉलो करना है और खुशी खुशी करना है। गोल सेट, हाँ जी, रुचि पूर्वक और अगर आप हिंदी में मुरली पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब तक मैं इंग्लिश में पढ़ती थी पर अब मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया है तो उससे जो वर्ड्स हैं और भाव जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आते हैं, तो उससे आपको और प्यार बाबा का महसूस होता है और मोटिवेशन मिलती है पुरुषार्थ करने में। और संगठन में योग करना। और हाँ, ये भी बहुत प्यारा है, बाबा को हर रिश्ते से याद करना बहुत प्यार से, और अपने थॉट्स में भी ऑब्जर्व करना कि आप किन किन चीजों के कारण कुछ लैकिंग है, वो पॉइंट्स ऐड करने हैं अपने रिलेशनशिप्स में ताकि आप उन पॉइंट्स पे चर्न करो अपने अमृत वेला में, तो वो चीजें आपको बाबा से प्राप्ति महसूस होगी।
ओम शांति। तो जिसको जिसको जो जो टॉपिक मिले थे आज सारे दिन भर, फिर से वही टॉपिक लेना और उनके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, लिखना। और जिनको टॉपिक्स नहीं मिले और जिन्होंने टॉपिक सुने उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर खुद उस पर चिंतन करना। ओम शांति।